ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेन फील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेन फील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 3 मार्च 2019 के लिए है। विषय मसीह यीशु। स्वर्ण पथ यूहन्ना। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उत्तरदायी अधियान 2 करिन्थियों। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हवाई नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रागत करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो ईश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थात ये है, परमेश्वर हमारे साथ। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो नासरत में आया, जहां वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। मरकस। फिर फरीसी निकलकर उसे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह मारकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। और वो रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से चौकस रहो। वो आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारे मन कठोर हो गए हैं? क्या आँख रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें समारण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थीं, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाईं? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? लूका। फिर उसने इसके विषय में के नित प्रार्थना करना, हिवाय न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मेरे मुदई से मुझे बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? लूका। जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कुफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई प्राणियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को अच्छा कर। वो यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वो इस युगे है कि तू उसके लिए ये कर, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनवाया है। यीशु उनके साथ चला, पर जब वो घर से दूर ना था तो सूबेदार ने कई मित्रों द्वारा ये कहला भेजा कि हे प्रभु दुख न कर, क्योंकि मैं इस युगे नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस युगे भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। मैं अभी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे को कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को के ये कर तो वो उसे करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने लौटकर उस दास को अच्छा पाया। मत्ती। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यर्मिया या भविष्य अधिवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रगट की है। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मत्ती। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जब मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होता है, सभी चीजों को समझने वाला वर्तमान मन मनुष्य जानता है कि ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। इस जीवित सत्य को समझने का एकमात्र मार्ग जो बीमार को उपचार देता है, ईश्वराई मन के विज्ञान में पाया जाता है, जैसा कि ये यीशु मसीह ने सिखाया और प्रदर्शित किया है। क्रिश्चियन साइंस का भावतिक उपचार अब परिणाम है। यीशु के समय के अनुसार ईश्वराई सिद्धांत का संचालन से मसीह से पहले के पाप और बीमारी मानवीय चेतना में अनिवास्तविकता खो देते हैं और स्वाभाविक रूप से गायब हो जाते हैं, और अवश्य रूप से अंधेरा प्रकाश और पाप को सुधार के लिए जगह देते हैं। अब अतीत की तरह ये शक्तिशाली कार्य अलौकिक नहीं है, बल्कि सर्वोच्च प्राकृतिक हैं। वो इमैनुअल या ईश्वर हमारे साथ है का संकेत है। मसीह सच्चा विचार है जो अच्छा लगता है। ईश्वर द्वारा मानव चेतना को बोलने वाले पुरुषों के लिए दिव्या संदेश मसीह आध्यात्मिक है। हाँ, दिव्या छवि और समानता, इंद्रियों के भ्रम को दूर करना, मार्ग, सत्य और जीवन, बीमारों को अच्छा करना और शैतानों को बाहर निकालना, पाप और बीमारी को नष्ट करना। यीशु उस व्यक्ति का नाम है जिसने अन्य सभी पुरुषों से अधिक मसीह को प्रस्तुत किया। उसका घाघ उद्धारण हम सभी के उद्धार के लिए था, लेकिन केवल उन कार्यों को करने के माध्यम से जो उसने किए और दूसरों को करना सिखाया। पाप और सवियान के विश्वास में दबे हुए लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो केवल आनंद या इंद्रियों के संतुष्ट के लिए जी रहे हैं, पदार्थ में उसने कहा, आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें ठीक करूं। उसने सिखाया कि भावतिक इंद्रियां सत्य और उसकी उपचार शक्ति को बंद कर देती हैं। जब उसमें मानवीय तत्व परमात्मा से संघर्ष करता है, तो हमारे महान शिक्षक ने कहा, मेरी नहीं लेकिन तेरी ही इच्छा पूरी हो, अर्थात मांस को नहीं परंतु आत्मा को मुझमें दर्शाया जाए। ये आध्यात्मिक प्रेम की नई समझ है। ये मसीह या सत्य के लिए सभी कुछ देता है। ये अपने दुश्मनों को आशीर्वाद देता है, बीमारों को अच्छा करता है, तुरती को मिटाता है, अत्याचारों और पापों से मरकतों को उठाता है और हृदय में नम्र गरीबों को सुसमाचार सुनाता है। जैसा कि यीशु ने सिखाया था कि मसीही धर्म पंथ नहीं था, ना ही कोई समारोह और ना ही कर्मकांडी यहोवा की ओर से कोई विशेष भेंट, लेकिन ये दिव्य प्रेम का प्रदर्शन था जिसमें तुरती करना और बीमारों को ठीक करना ना केवल मसीह और सत्य के नाम पर, लेकिन सत्य के प्रदर्शन में, जैसा कि दिव्य प्रकाश के चक्रों में होना चाहिए। यीशु ने अपने चर्च की स्थापना की और मसीह उपचार की आध्यात्मिक नींव पर अपने मिशन को बनाए रखा। उसने अपने अनुयायियों को सिखाया कि उसके धर्म में एक दिव्य सिद्धांत है जो तुरती को निकालता और बीमार और पापी दोनों को ठीक करता है। उसने दावा किया कि कोई खुफिया कार्रवाई और ना ही जीवन ईश्वर से अलग है। अपने ऊपर आई उत्पीड़न के बावजूद उसने शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पुरुषों को बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। सवाल तो अब जैसा था, यीशु ने बीमारों को कैसे ठीक किया? उसके इस सवाल का जवाब दुनिया ने खारिज कर दिया। उसने अपने शत्रुओं से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, अर्थात कौन है या वो क्या है जो इस प्रकार शैतानों को निकालता और बीमारों को ठीक करता है? शमौन ने अपने भाइयों के लिए जवाब दिया और उसके जवाब ने एक महान तथ्य को सामने रखा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मतलब मसीहा वही है जिसने तुम्हें घोषित किया था। मसीह परमेश्वर की आत्मा, सत्य, जीवन और प्रेम की भावना जो मानसिक रूप से ठीक करती है। इस दावे से यीशु के प्रति समर्पण का अभ्यास हुआ। हे शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। मतलब प्रेम ने तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाया है। ईश्वराय विचार की अज्ञानता विचार के ईश्वराय सिद्धांत की अज्ञानता पर विश्वास करती है। सत्य और प्रेम की समझ सिद्धांत जो शाश्वत भलाई के सरों पर काम करता है और बुराई में विश्वास और बुराई के अभ्यास दोनों को नष्ट करता है, दिव्याय विचार की ओर जाता है। इस आध्यात्मिक रूप से वैज्ञानिक आधार पर यीशु ने इलाज के बारे में बताया जो बाहरी लोगों के लिए चमत्कारी था। यीशु ने मसीह युग में सभी मसीही धर्म धर्मशास्त्र और चिकित्सा के लिए मिसाल कायम की। मसीह अब सीधे आदेशों के तहत हैं, जैसे कि वो तब थे, जैसा कि मसीही होना, मसीही आत्मा के अधिकारी होना, मसीही उदाहरण का पालन करना और बीमारों के साथ साथ पाप करने वालों को ठीक करना। आज अतीत की तरह आध्यात्मिक विचार की पुनर्वार्ति की अनभिगायता अंधविश्वास उस पर दरवाजे बंद कर देते हैं, और अगर ये किसी भी सामग्री और एक सिद्धांत पर गाढ़ा जाता है तो ये बीमार और पापियों के इलाज की निंदा करता है। आदर्शवाद की इस अस्वीकृति को दर्शाते हुए परमेश्वर के सच्चे विचार शारीरिक और मानसिक सभी त्रुटि से मुक्त यीशु ने पूछा, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कब यीशु के अनुयायी उसके सभी तरीकों से उसका अनुकरण करेंगे और अपने शक्तिशाली कार्यों को अनुकरण करेंगे? दिव्य चिकित्सा के पुनः प्राप्त होने का समय हर समय होता है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक स्तर को रखता है वो अब मसीह का प्याला पीता है और मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। यदि सभी सूली को उठाएंगे, बीमारों को अच्छा करेंगे, बुराइयों को बाहर निकालेंगे और गरीबों को मसीह या सत्य का उपदेश देंगे तो साहस राब्दी में लाएंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। उद्देश्यों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के उद्देश्यों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।